मैंने की दावत की धूप में मचाऊं, अता ऐसा कर हौसला या इलाही।
गौसे पाक रदी अल्लाह तआला नो एक बार 18 साल की उम्र और एक काफिले में जा रहे हैं। गीलान से यह काफिला बगदाद की तरफ रवा दवा था। जब शहर हमदान से रवाना हुआ तो जैसे ही जंगल शुरू हुआ डाकुओं ने उस काफिले को घेर लिया। अब जब आप रवाना हुए थे तो आपकी वालदा ने आपको कहा था, बेटा जब भी बोलना सच बोलना, ठीक है। और आपके पास कुछ रकम भी थी तो 40 दीनार थे। डाकुओं ने लूटना शुरू किया, आपके पास पहुंचे तो कहा तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? आपने कहा मेरे पास 40 दीनार हैं जो मेरे कपड़ों में सिले हुए हैं। डाकुओं का जो ग्रोह का रुकन था बड़ा हैरान हुआ कि लोग माल हमसे छुपाते हैं, ये बच्चा खुद ही बता रहा है किधर है। उसने आके अपने सरदार को कहा, बड़ा अजीब गरीब एक नौजवान है जो खुद ही बता रहा है मेरे पास 40 दीनार हैं और कपड़ों में सिले हुए हैं। तो अब डाकुओं का सरदार उसके पास आया और कहा कि नौजवान क्या बात है, लोग तो डाकुओं से अपनी दौलत छुपाते हैं मगर तुम सख्ती किए बगैर अपनी दौलत जाहिर कर रहे हो। नौजवान ने क्या कहा, मेरी मां ने घर से चलते वक्त मुझे नसीहत फरमाई थी, बेटा हर हाल में सच बोलना, बस मैं अपनी वालदा के साथ किया हुआ वादा निभा रहा हूं। मेरी मां ने कहा था सच बोलना, मैं ये नहीं जानता मेरे पैसे चले जाएंगे, मां से जो वादा किया था वो निभा रहा हूं। आपने पूछा पैसे, मैंने बता दिया 40 दीनार कपड़े में सिले हुए हैं। अब जरा गौर कीजिए, बड़ी अहम बात करने लगा हूं मेरे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाजरीन। गौसे पाक ने यह नहीं कहा कि तुम तौबा कर लो, डकैती छोड़ दो, ये गलत काम है। आपने सच बात की कि मेरे पास दीनार मौजूद हैं, लेकिन जब बंदा सच्चा हो ना उसकी बात कैसे असर करती है, जरा गौर करो। नौजवान का जब यह बयान सुना, ये बात गौसे पाक की बात तासीर का तीर बनकर डाकुओं के सरदार के दिल में पेवस्त हो गई और उसकी आंखों से आंसुओं का दरिया छलकने लगा। उसका सोया हुआ मुकद्दर जाग उठा। वो डाकुओं का सरदार कहता है, साहबजादे तुम किस कदर खुशनसीब हो कि दौलत लुटने की परवाह किए बगैर अपनी वालिदा के साथ किए हुए वादे को निभा रहे हो, और मैं किस कदर जालिम हूं कि अपने खालिक को मालिक के साथ किए हुए वादे को पामाल कर रहा हूं और मखलूक खुदा का दिल दुखा रहा हूं। ये कहने के बाद वो साथियों समेत सच्चे दिल से तायब हुआ और सारा माल वापस कर दिया। खाली गौसे पाक का माल वापस नहीं हुआ, पूरे काफले वालों का माल वापस हो गया। क्यों? सच को आंच नहीं है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने सच बात की थी। तो ऐ मेरे मदनी मुन्नों, इस कहानी से सबक क्या मिला कि जब बोलें सच बोलें। झूठ ये बहुत बुरी आदत, जहन्नम में ले जाने वाला काम, अल्लाह की नाराजगी का सबब है। सुनिए सुनिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। बुखारी शरीफ की यह हदीस है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और बेशक बंदा सच बोलता रहता है। सुनो, जो हमेशा सच बोलता है सुनो इसे इनाम क्या मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं, बेशक जब बंदा सच बोलता रहता है यहां तक कि वो अल्लाह अज़्ज़ा बदल के हां सिद्दीक लिख दिया जाता है, और झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। बेशक बंदा झूठ बोलता रहता है यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ा बदल के हां कज़्ज़ाब यानी बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला लिख दिया जाता है। सोचिए वो कितना बदनसीब है जो रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में झूठा लिखा हुआ है, कज़्ज़ाब लिखा हुआ है। बचपन ही से हम बच्चे को खुद भी गलती से झूठ की आदत लगा देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। बेटा कह दो अब्बू घर पे नहीं है, ये क्या है? यानी आप बच्चे को बचपन ही से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किसी से ना मिलना हो तो झूठ बोल दिया करो। अब बड़ा होकर यह बच्चा आप ही को घुमाएगा, अबू मैं यहां नहीं गया था, मैं वहां गया था, मैं ये करने गया था। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो अभी आया हूं। नहीं नहीं, मैं देर से नहीं आया था, रात जल्दी आ गया था। अब वो बाप ने सिखाया, बेटा बाप को ही घुमाता रहता है। झूठ इतनी बुरी आदत है। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदना इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है, صادق و مصدوق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے ایک میل دور ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا, سچ, ہمیشہ سچ. کبھی کہتے ہیں قاری صاحب اس لیے تاخیر ہو گئی, طبیعت خراب تھی, گاڑی خراب ہو گئی, گھر میں فلاں بیمار تھا. اب جو جھوٹ بولتا ہے نا بیٹا, اس کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کہا کہ آپ رہتے کورنگی میں, کسی نے پوچھا کہاں رہتے ہیں, آپ نے کہا میں جناب لیاقت آباد میں رہتا ہوں, نہیں بتانا تھا اس کو کورنگی میں رہتا ہوں. اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے اس کو اپنا ایڈریس لیاقت آباد بتایا ہے, کیونکہ اس نے ایک سال بعد دوبارہ پوچھنا ہے تو آپ نے اس وقت بھی یہی بتانا ہے کہ میں لیاقت آباد میں رہتا ہوں, کیونکہ کورنگی زبان سے نکل گیا تو پکڑا جاؤں گا. جھوٹ بول کر یاد رکھنا پڑے گا, ہے کیوں نہیں آئے بھائی مدرسے, تین دن سے نہیں آئے. استاد صاحب وہ نانی کا انتقال ہو گیا. اب وہ نانی کا انتقال کروا دیا, نانی ہے زندہ, تو اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے نانی کا انتقال کروا دیا ہے, کیونکہ اب نانی کو بیمار نہیں کر سکتا نا. وہ پھر پکڑا بھی جاتا ہے بندہ, دو چار مہینے بعد پھر کہتا ہے استاد صاحب نانی بیمار ہو گئی تھی. تو اب پکڑا گیا, پہلے انتقال ہوا پھر بیمار ہو گئی. تو جھوٹ بول کر پریشانی رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے, اسے یاد ہی رکھنا پڑتا ہے. سچ بولنے والا ٹینشن میں نہیں. نیند سے اٹھاؤ, کہاں رہتے ہو, یہی بتائے گا, کورنگی میں رہتا ہوں, جہاں رہتا ہے وہی بتائے گا نا. سچ بولنے والے کو کوئی ٹینشن نہیں, یاد نہیں رکھنا پڑتا, ہمیشہ سچ بولتا ہے, جو پوچھو گے وہی بتائے گا کیونکہ وہ سچ ہے. تو کبھی بھی جھوٹ کے قریب بھی نہیں جانا. جس کے منہ سے فرشتہ اس کی بدبو سے ایک میل دور ہو جائے, اس پر رحمت کیسے نازل ہوگی, اس کو برکت کیسے ملے گی, اس کو قرآن کا نور کیسے ملے گا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے, اس کہانی سے درس یہ ملا کہ اب زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, اور فیضان سچ جاری رہے گا انشاءاللہ.
میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں, عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.